आरवी तो आवाज से ही उसे पहचान गई थी। जो आवाज एक वक्त पर खौफ बनकर उसके जहन में बैठी हुई थी, उसे भुलाना आसान तो नहीं था। कानों में उसकी आवाज पड़ते ही आरवी उसे पहचान गई थी और अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। उसकी बातें सुनकर आरवी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, सांसें थम सी गईं, भय आंखों में पसर गया, डर से चेहरा काला पड़ गया। पहले दो बार विहान उसके साथ गलत करने की कोशिश कर चुका था और आज फिर वो उसी गंदे इरादे से उसके पास आया था। उसकी बातें सुनकर आरवी का रोम रोम भय से कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। उसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की, चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आवाज उसके अंदर ही घुटकर रह गई। विहान ने एक हाथ से उसके मुंह को कस के दबाया हुआ था, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी, और दूसरी बांह को उसकी कमर पर लपेटते हुए उसने उसको सोफे पर से उठा लिया, फिर उसको घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगा। आरवी बचने के लिए, उससे छूटने के लिए लगातार हाथ पैर चला रही थी, जिस वजह से सामान बिखर गया था। चीख रही थी, शान को पुकार रही थी, पर आवाज शान तक तो तब पहुंचती जब मुंह से बाहर निकलती। सब कोशिश करके वो हारती जा रही थी, न विहान से छूट पा रही थी, न शान को बुला पा रही थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। विहान उसके लाख विरोध के बाद भी उसे घसीटते हुए बाहर लेकर चला गया, जहां उसकी गाड़ी पहले से मौजूद थी। उसने आरवी को पीछे की सीट पर फेंक दिया। वो तुरंत उठकर भागने को हुई, पर विहान ने उसे वापस सीट पर धक्का दे दिया। आरवी चिल्ला पाती, इससे पहले ही वो उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर उसके मुंह को अपने हाथ से दबाकर बंद कर दिया। आरवी अब भी छटपटा रही थी, पर उसके भारी भरकम शरीर के नीचे दब चुकी थी, तो हिल भी नहीं पा रही थी। विहान ने उसके गले से दुपट्टा खींच लिया। भय से आरवी की आंखों की पुतलियां बड़ी बड़ी हो गई, पर अगले ही पल विहान ने उस दुपट्टे को उसके मुंह पर रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही सेकंड बाद आरवी का मुंह उसके दुपट्टे से बन चुका था। विहान ने उसे वापस सीट पर लिटाया और उसके गालों पर उंगलियां फिराते हुए घिनौनी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, रिलैक्स जाने मन, यहाँ कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। इस कार की सीट पर वो सब करने में वो मज़ा कहाँ जो अपने रूम में अपने बैठ कर तुम्हारे हुस्न के साथ खेलने में है। सालों की ख्वाहिश है मेरी तुम्हें अपने बिस्तर पर लाने की, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बस कुछ देर इंतज़ार करो, उसके बाद तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और इस बार कोई हमारे बीच नहीं आ सकेगा, न तुम्हारी वो दोस्त और न तुम्हारा पति, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो, और जब तक पता चलेगा मैं तुम्हारे इस जिस्म को हासिल कर चुका हूँगा। आरवी लगातार अपना सर झटकने लगी, अपने हाथ से उसे खुद से दूर करने लगी, पर कुछ ही देर में विहान ने उसके हाथ पैरों को बांध दिया और फिर आगे जाकर कार स्टार्ट कर दी। आरवी ने गाड़ी को वहां से जाते देखा तो अपनी बेबसी और लाचारी देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन वो शान को पुकारने लगी। दूसरी तरफ अंदर अपने कैबिन में बैठे शान को अचानक से बेचैनी सी महसूस होने लगी, जैसे उसका दम घुट रहा हो, सांस ना आ रही हो। उसने आंखें बंद किए हुए ही अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोल दिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी, चेहरे के भाव बदल से गए थे, पर अब भी वो अपने विचारों के भंवर में उलझा हुआ था। तभी उसके कानों में कार के स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी और चौंकते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। ये देखकर वो हैरान हो गया। अगले ही पल उसके दिमाग में आरवी का ख्याल आया और अपने फ़ोन में फ्लैश चलाकर वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागा। रिहर्सल हॉल, जहां कुछ देर पहले वो आरवी को छोड़कर गया था, वहां आरवी को ना देखकर वो परेशान सा हो गया और तुरंत ही आरवी को फ़ोन करने लगा। तभी उसका ध्यान सोफे के नीचे से आती हल्की हल्की रोशनी पर पड़ा। आगे बढ़कर उसने झुककर देखा तो आरवी का फ़ोन नीचे पड़ा था, जो विहान से बचने की कोशिश में आरवी के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। शान ने तुरंत फ़ोन उठाया और अब आसपास बिखरी चीज़ों पर उसका ध्यान गया। इसके साथ ही शान का दिमाग ठनक गया। वो तुरंत सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ा, जहां कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखती थी, और वहीं से लाइट और जनरेटर का कनेक्शन भी था। उसने जाकर चेक किया तो लाइट की वायर और जनरेटर की वायर दोनों कटी हुई थी। अब तो शान का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। उसने तुरंत ही वायर जोड़कर लाइट्स ऑन की और कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग देखने लगा, पर सब ब्लैंक था। शान ने परेशान सा अपने बालों में हाथ फेरा। फिर अचानक ही उसके दिमाग में गाड़ी वाली बात आई। उसने तुरंत ही दूसरे कंट्रोल रूम का रुख किया, जहां बाहर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग चलती थी। साथ ही शूटिंग का काफी सामान वहां पड़ा था। शान ने जल्दी से फुटेज चेक की तो एक कार उसे अंदर आती नजर आई, और ये तभी अंदर आई थी जब आरवी और शान की बहस हो रही थी। फिर बाहर बारिश भी हो रही थी, इसलिए शायद उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी, पर अब बारिश कम हो गई थी इसलिए कार के स्टार्ट होने की आवाज़ शान के कानों पर पहुंच गई। कार का दरवाजा खुला और एक लड़के ने बाहर कदम रखा, जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी,
जिसकी कैप से उसका आधा चेहरा कवर था। नीचे से ब्लैक पैंट और फेस पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा कवर हो गया था। अब बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, पर वो भी कैप से वजह से ठीक से नजर नहीं आ रही थी। शान ने जूम करके उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पहचानने की कोशिश की, पर आसान नहीं था उसे पहचानना। अचानक ही शान की नजर उसके जूतों पर पड़ी और दिमाग में विहान का ख्याल कौंध गया। जब वो उससे मिला था तो यही शूज पहने थे उसने। अब शान ने ध्यान से उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो शक्ल भले न दिख रही हो, पर उसको ध्यान से देखने पर शान उसे पहचान गया। उसने तुरंत ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने उस आदमी को फोन लगाया जो उस पर नजर रख रहा था, पर बारिश की वजह से फोन नहीं लग रहा था। शान ने गुस्से में फोन को पटकना चाहा, फिर एकदम से रुक गया और कमिश्नर को फोन लगा दिया। साथ ही खुद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। सारी बात उन्हें बताने के बाद शान ने विहान की लोकेशन चेक करने को कहा और फिर उनकी बताई लोकेशन की तरफ अपनी गाड़ी भगा दी। गनीमत थी कि अब बारिश कम हो गई थी और जिस तरफ वो जा रहा था उस तरफ सड़कें भी खाली थी और अब उसकी कार हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। कमिश्नर सर से वो लगातार कनेक्टेड था और वो भी उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि इस बार शान विहान को छोड़ने नहीं वाला था। दूसरी तरफ खाली रास्ते का फायदा उठाकर ही विहान इतनी आसानी से यहां तक पहुंच गया था। वो काफी दिनों से आरवी की एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। घर पर उसने अपने मॉम डैड को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भेज दिया और महीने भर का उनका घूमने का इंतजाम कर दिया था। अनीता जी को बदलाव की जरूरत थी और सालों से घर में रही थी तो ठीक होने के बाद उन्होंने भी कहीं बाहर जाने की इच्छा जाहिर की, तो हर्षवर्धन को भी दोनों की बात माननी पड़ी। विहान ने सोच लिया था कि उनके वापस आने के पहले वो अपना काम कर लेगा, पर यह इतना भी आसान नहीं था। पहले थिएटर फिर स्टूडियो की सिक्योरिटी टाइट होने और चेकिंग की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता था और घर में घुसने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। रास्ते में भी आर्य को किडनैप करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो सही मौके की तलाश में था ताकि अपने काम को अंजाम दे सके, और आज मौका हाथ आते ही उसने अपना काम कर दिया था।
अब आरवी को किडनैप करके तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और पीछे मौजूद आरवी अब भी अपने हाथ पांव खोलने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी बजाज मेंशन के अंदर वाले गेट के बिल्कुल सामने जाकर रुकी और विहान आरवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर चला गया। आरवी छटपटाती रही पर कोई फायदा नहीं हुआ। रेहान ने सब नौकरों को आज छुट्टी दे दी थी और गार्ड की हिम्मत नहीं थी कि वो इसके सामने कुछ कह सके। रेहान आज अपने काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहता था, इसलिए उसने पहले ही सब इंतजाम किया हुआ था। आज वहां ऐसा कोई नहीं था जो आरवी को उसके गंदे इरादों का शिकार होने से बचा सके। विहान उसे अपनी बाहों में उठाए तेज कदमों से अपने कमरे में पहुंचा और आरवी को बेड पर पटखने के बाद उसने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आरवी डर से किसी तरफ पीछे खिसकने लगी। इतने में विहान एक बार फिर उसके पास पहुंच गया और उसकी टांगों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आरवी बेड पर लेट गई। उसने फिर से उठना चाहा, पर विहान ने उसके पैर को दबा दिया, फिर उसके हाथ को खोलने लगा। उसने जैसे ही आरवी के हाथ खोले, आरवी ने तुरंत उसको खुद से दूर धक्का दे दिया, पर अगले ही पल विहान ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा नखरे मत दिखा और चुपचाप जो करता हूं करने दे। अगर शांति से मान गई तो खुश कर दूंगा तुझे, इतना मजा दिलाऊंगा जितना तेरा वो पति तुझे नहीं दिला सका होगा, और अगर ज्यादा नाटक किया तो इतना दर्द दूंगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी तूने। आरवी ने उससे छूटने की कोशिश की, पर जब नाकाम रही तो पूरी ताकत के साथ अपना सर उसके सर पर दे मारा। कुछ पल को दोनों का सर घूम गया। विहान की पकड़ उस पर ढीली हो गई और आरवी ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और बेड से उतरने लगी, पर पैर बंधे होने की वजह से औंधे मुंह बेड पर गिर गई। उसने तुरंत ही अपने पैर खोलने चाहे, इतने में विहान ने उसकी कमर को पकड़कर उसे वापस बेड पर गिरा दिया और उसके पेट पर अपना एक पैर रखते हुए गुस्से से भड़क उठा। सीधे तरीके से नहीं मानेगी तू तो ठीक है, अब जबरदस्ती ही होगी तेरे साथ। विहान का पूरा भार आरवी के पेट पर था, जिस वजह से अब उसके लिए उठ पाना मुमकिन नहीं था। विहान ने बारी बारी करके उसके दोनों हाथों को दो तरफ खींचते हुए टाइट से बांध दिए, फिर उसके मुंह पर बंधा दुपट्टा खोलकर दूसरी तरफ फेंक दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, बहुत मचल रही है ना, बहुत गर्मी चढ़ी है मुझे, बचने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस कि अब तू कुछ नहीं कर सकती।